તારીખ 7/1/1994 શ્રીમદ રાજચંદ્ર પત્રાંક 913 ઉપર પૂજ્યભાઈ શ્રી શશીભાઈનું દેવલાલીમાં પ્રવચન સળંગ પ્રવચન નંબર 86.
कर्तव्य क्या है? आत्मार्थी जन को कर्तव्य क्या है? कि सहज स्वभाव स्वरूप परिणाम कर्तव्य है. क्या कर्तव्य है? सहज स्वभाव स्वरूप परिणाम कर्तव्य है. ऐसे परिणाम कैसे किया जाए, इसकी विधि क्या, इस पर कृपा भी देवी के योजना में है. कि अपना आत्मा को देह से, तेजस और कार्मण शरीर से भिन्न अवलोकन करने की दृष्टि साध्य करके क्या क्या करके विधि में क्या क्या करना है, ये बात चलेगी. वचनामृत तो पूरे 10 लीटर का एक है, एक ही वचनामृत है, पूरा पैराग्राफ है, कहीं भी पूर्ण विराम नहीं आता है, आखिर में पूर्ण विराम लिया है. तो आखिर में वो लिया है कि यही सहज परिणाम रूप स्वभाव करने योग्य है, करने योग्य माने कर्तव्य है. तो कैसे कर्तव्य है? ऐसा करके, ऐसा करके, ऐसा करके, ऐसा करके, सारा जो वचन की संकल्पना है, वाक्य की संकल्पना है, तो इस प्रकार की है कि आत्मा को भिन्न करना है. किससे भिन्न करना? कि देह से भिन्न करना, तेजस और कारण शरीर से भी भिन्न करना. कैसा आत्मा को भिन्न करना? कि उपयोग लक्षण से स्फुरायमान हो रहा है ऐसा आत्मा को. आत्मा को भिन्न करना वो सामान्य बात तो चलती है, जब विधि विषयक बात चलती है तो विधि में क्या आता है? कि ज्ञान से उसको भिन्न कर सकते हैं, एक ही साधन है और कोई साधन नहीं है. ज्ञान से इसलिए भिन्न कर सकते हैं कि अभिन्न भी ज्ञान से ही करते हैं. हमारी अभिन्नता राग से, देह से, अन्य पदार्थ से हो रही है, वो भी इसमें ज्ञान माध्यम है. और મારી પાસે આવવાની વાત છે. આપણે બધા ઘરમાં ઘરમાં ને કરવાની મજા આવે ને, બહુ ભાજવાનું આવે. કે જીસ ઉપયોગ છે પર પદાર્થ ને જાણતે ભી રાગ દ્વેષ માં જાતા હૈ. जैसे कोई समाचार मिलते ही दुख होता है या सुख होता है, कुछ न कुछ हो जाता है. टेलीग्राम आया है तो कोई असाधारण प्रसंग होता तो टेलीग्राम आता तो हर्ष होता है या दुख होता है, जानते ही हो जाता है. तो जानना ज्ञान के पर्याय उपयोग के हैं. इसके पहले भी हमारे अभिप्राय में जो ज्ञान के पर्याय है, अभिप्राय भी ज्ञान के पर्याय है, कुछ हमने गलत निर्धार निर्णय निश्चय कर रखा है. कितनी चीज अच्छी है, वो चीज अच्छी है, पुरानी पुरानी ठीक अच्छी चीज नहीं है। तो ये हमारा निर्धार अनुकूल कोई भी प्रसंग बनता है तो या तो राग होता है निर्धार के अनुसार, या तो द्वेष होता है। पहले अभिप्राय को ठीक करना पड़ता है, ऐसा विज्ञान है। ज्ञान में भी पहले अभिप्राय को ठीक करना पड़ता है, फिर परिणाम स्वतः ठीक हो जाएगा। ऐसी एक परिणाम की योग्यता विषय परिस्थिति है। तो यहाँ भी आत्मा को भिन्न करने के लिए उपयोग लक्षण लिया है कृपा गुरु ने। उपयोग लक्षण से सनातन स्फुरित ऐसा जो हमारा आत्मा है, तो भिन्न करने के लिए एक बहुत सुंदर मार्मिक वचन है, वो उतना है कि इसको अवलोकन करने की दृष्टि साध्य करना। ऐसा नहीं कहा कि ऐसा तुम विचार कर, ऐसा तुम विकल्प कर। क्या बात कहे? अवलोकन करने की दृष्टि साध्य करना। अब देखो तो जो उपयोग है वो आत्मा को स्वयंवन करने का कोई प्रकार दिखता है कि नहीं दिखता है? उपयोग में अवलोकन करना है, उपयोग से, उपयोग लक्षण से। मैंने उपयोग से आत्मा कैसा है? सनातन स्फुरित है। तो आत्मा स्फुरायमान होता है कि नहीं होता है हमारा उपयोग से? यह एक एलियान करने के लिए अवलोकन करने की चीज है, विचार करने की चीज नहीं। अवलोकन करना इसका मतलब ऑब्जर्वेशन करना, सीधा ही ऑब्जर्वेशन करना। तो ऑब्जर्व इसको अवलोकन कहते हैं हमारे। और विचार में कुछ न कुछ मन में बात आया करती है, उस प्रकार से भी नहीं, ऐसा प्रकार भी नहीं। लेकिन जैसे हम देखते हैं भूतकाल के प्रसंग को भी हम विजुलाइज कर सकते हैं, ऐसा खाया था, हम उतर गए तो वहां ऐसा था, हम ऐसे घूमते थे, ऐसे बात करते थे, ऐसी बात है, ऐसी बात है। परोक्ष पदार्थ को भी हम विजुलाइज करते हैं, विकल्प नहीं करते हैं उस पर। तो क्या हम तो कुछ फीलिंग आती है उसमें, दुख का प्रसंग हो तो दुख की फीलिंग आ जाएगी, सुख का प्रसंग हो तो हर्ष का फीलिंग आ जाएगा। विचार में और ये विजुअलाइजेशन में क्या अंतर है? कि विचार से फीलिंग इतनी नहीं होती है जितना विजुअलाइजेशन से होता है। वो डीन हॉर्निश ने वो किताब में विजुअलाइजेशन का प्रकरण लिखा है, तत्वज्ञान की बहुत चर्चा किया है उस आदमी ने। फॉरेनर होते हुए भी, अमेरिकन होते हुए भी तत्वज्ञान की बहुत चर्चा किया है उसने, काफी साइकोलॉजिकल स्टडी किया है, क्योंकि हार्ट डिजीज तो साइकोलॉजी से बहुत संबंध रखता है। इमोशनल स्ट्रेस जिसको बोलता है, वो रुपया में 90% काम हार्ट डिजीज में इमोशनल स्ट्रेस का है। उसने जो भी कारण लिया है उसमें फिजिकल कारण तो रुपया में 2 आने लिया है, 8 कारणों में 7 कारण साइकोलॉजिकल लिया है उसने। पढ़ा बहुत स्टडी किया है साइकोलॉजिकल। आप विजुलाइज करो तो मेरा हाथ बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है, मेरा हाथ बहुत अच्छा है, ऐसा विजुलाइज करो, ऐसा कोई दिखता नहीं है, फिर भी वो उधर ले जाता है अपने किताब में। अब इधर तो उपयोग जो है हर समय मौजूद है, तो ये तो लाइव विजुअलाइजेशन है। भूतकाल का जो पदार्थ है वो लाइव विजुअलाइजेशन नहीं होता होगा, ये तो लाइव होगा, जीवंत है। अपना उपयोग तो हर समय उठता है हमारे प्रदेश में से। देखो जहां से उपयोग उठता है वही हमारी चैतन्य भूमि है। उपयोग जिस जहां से प्रकट होता है वही हमारी चैतन्य भूमि है। उसको देखो, विचार करो नहीं, उसको
देखो
देखो। तो जीवन जो प्रसारण जैसे टेलीविजन में देखा जाता है, देखते हैं, ऐसा ही ये तो उतना भी दूर है हमारी आत्मा से, वो तो उतना भी दूर है, फिर भी हम कितने फील करता है कि देखो यहाँ हो रहा है, वही हम देख रहे हैं, वो तो वहां हो रहा है या तो इधर हो रहा है, उतना फर्क है, उतना नजदीक है, उतना समीप है, ऐसी एक बात चल रही है कि उपयोग लक्षण से सर्वकाल स्फुरायमान होता रहा है, ऐसा हमारा चैतन्य स्वरूप है, उसको हमें अवलोकन करना है। उसको अवलोकन करने का दृष्टिकोण हमारे पास होना चाहिए, इसी को दृष्टि साध्य किया ऐसा है, ऐसी दृष्टि साध्य करके, इतना लिखते हैं कृपा गुरुदेव। बीच में दो बात आ गई कि जो भी पुद्गल देहादि है उससे भिन्न, उसको साथ में नहीं लेना है, देहादि को साथ में
नहीं लेना।
मतलब जो भी रूपी पदार्थ, जैसे देह हो, आवाज हो, गंध हो, स्पर्श हो, जो भी हो, उसमें सब आ जाता है, ऐसे भिन्न नहीं होता है।
पंच इंद्रिय ना दरेक विषय हो,
देह में पांच इंद्रिय ले लेना है, पांच इंद्रिय के विषय, ये तो अवयव है, इनके विषय सब ले लेना है, क्योंकि देह नौ कर्म है, इनके विषय भी नौ कर्म है। और जो तेजस कारण शरीर है वो कोई छद्मस्थ जीव देख नहीं सकता, लेकिन अनुभव कर सकता है, तो उससे भी भिन्न लेना, उससे भी भिन्न लेना, अनुभव ऐसे कर सकता है, जैसा उदय आता है ऐसा परिणाम हो जाता है, प्रसन्न नहीं होने पर भी परिणाम हो जाता है, वो कब भिन्न होता है कि सनातन स्फुरित उपयोग लक्षण से जो सनातन स्फुरित है उसका अवलोकन आता है, तब अवलोकन नहीं आता है तो भिन्नता नहीं होगी, भिन्नता का प्रोसेस नहीं होगा, भिन्नता तो नहीं होगी, भिन्नता की प्रक्रिया जो होनी चाहिए वो भी नहीं होगी। मुमुक्षु भूमिका में भेद ज्ञान प्रक्रिया रूप है और ज्ञानी की भूमिका में भेद ज्ञान तो फल स्वरूप है, दोनों को भेद ज्ञान ही कहते हैं। मुमुक्षु को ये कहेंगे कि आप भेद ज्ञान करो, भेद ज्ञान करो मतलब भेद ज्ञान की प्रक्रिया में आओ, और प्रक्रिया करते करते भेद ज्ञान हो जाएगा तो एक समय में ज्ञान और राग भिन्न भिन्न अनुभव में आता रहेगा, विकल्प नहीं करना पड़ेगा, सहजपणे हो जाएगा, ये सहज स्थिति हो जाएगी। ऐसी दृष्टि को साध्य करके उस चैतन्यात्मक स्वभाव आत्मा, कैसा आत्मा, चैतन्यात्मक स्वभाव आत्मा, चैतन्यपना ऐसा जिसका स्वभाव है, ऐसा आत्मा निरंतर वेदक स्वभाव वाला है, यहां से ज्ञान वेदक तो वेदक स्वभाव वाला है, वेदन करना, अनुभूति करना, अनुभव करना, ये इसका स्वभाव है। तो चैतन्यात्मक स्वभाव आत्मा निरंतर वेदक स्वभाव वाला होने से, क्योंकि अनुभूति स्वरूप भगवान आत्मा का वेदन चालू ही है,
निरंतर
चालू है, क्योंकि वो तो इसका स्वभाव है। जैसे ज्ञान को बंद नहीं कर सकते, उपयोग को हम बंद नहीं कर सकते, उपयोग बंद हो जाए ज्ञान का
नहीं,
ऐसे वेदन को भी हम बंद नहीं कर सकते। एक ज्ञान सामान्य है, एक ज्ञान विशेष है, ऐसा निरंतर वेदक स्वभाव वाला होने से अबंध दशा को प्राप्त न हो जाए, वहां तक जब तक अबंध दशा को प्राप्त यानी मोक्ष दशा को प्राप्त नहीं होता है, वहां तक वो शाता अशाता रूप अनुभव को वेदन किए बिना रहने वाला नहीं है। अब क्या समस्या क्या चलती है कि हमें असाता वेदनी नहीं चाहिए। इसी जीव को पीड़ा असाता वेदन करना नहीं है। अब इससे छूटना कैसे है, इसकी खोज विचारवान उत्तम पुरुषों ने की। जब विचारवान उत्तम पुरुष ने उसकी खोज की तो उसको पता चला कि ये तो वेदक स्वभाव वाला है। बंदे दशा में तो साता साता को ही भोगेगा, वेदेगा, भोगना वेदना अनुभव करना एकार्थ है। संबंध दशा में, बंद दशा में तो साता असाता को भोगेगा ही, इसमें साता तो नजर नहीं आती। असाता के अग्नि जलती है, प्रज्वलित होती होती हो रही है।
ऐसा करना मुख्यत्व तो परिजन जो है कि बाह्य संजय को लेवा
ये अपने काल सवार चालू थो। जब आगे एक पैराग्राफ चालू की उसे कि समस्त संसारी जीवराशि ने असाता नो उदय मुख्य पड़े होते हैं। सारा ना सारो तंदुरुस्त बैठा तो मानसो एने पूछो कि तुमने कहीं तकलीफ मुझे तो हा नहीं करे, तो लगभग आ स्थिति से कहीं तो आवे छे, गड़बड़ छे, थोड़ूक तो आम थाय छे, क्यारेक तो आम थाय छे। छता कोई ने पण जारे मानो कि कोई एवी पण व्यक्ति होय छे कि जेने तंदुरुस्ती पूरी होय छे, शारीरिक असाता नथी होती, तो एने उपाधिना अनेक प्रकारना दुःख होय छे। शरीर सारो तो पाछ बधु सरखू एवं बनतू नहीं, कहीं ना कहीं कोई ने कोई प्रकार की प्रतिकूलता पैदा करते हुए न हो। कोई एम कहे ना ना अमार तो शरीर पर सारू, बार ना संयोगों सारा। कोई तीजी मुश्किल हो घर में जो बे पांच दस जना हो प्रकृति ना मेल नहीं होता कोई दिवस न हो, कोई दिवस न हो, केम के बधाई ना पूर्व कर नहीं जाए। एक स्वभाव वाला एक घर में बधा मानसो काढ़वा क्या थी होय के रीते नेक्स्ट इम्पॉसिबल। एटले बधाने साथे एडजस्टमेंट करवू पड़े छे। एडजस्टमेंट करवू पड़े छे एनो अर्थ शुं छे कि पोतानी इच्छा प्रमाणे बधुं नथी थतुं घर में। मुख्य मानस होय तो एनी इच्छा प्रमाणे एनो थाय, दस में तो दसे ने एवं होय कि बधे एने क्यांक तो एडजस्टमेंट करवू ज पड़े। एटले के पोतानी इच्छा प्रमाणे एनो थाय।
पहेला तमे कहीं आगे कहता
एक जीव ने आखा दिवस में जितनी इच्छाओ थी बड़ी फुलफिल थी सके नहीं, हिसाब चौपड़ी लेने बैसो नोटबुक लेने 10% नहीं थे, 90% में फेल जाए। केम के आ जीव ने एनी इच्छा नाम ने पर्याय ने जो पूरी जगह आपवामां आवे, अवकाश पूरो आपवामां आवे, तो ज्ञानीओ एम कहे छे કે આખું જગત છે 14 બ્રહ્માંડ એક પરમાણુ જેટલું થઈ જાય એની ઈચ્છામાં, એવડી મોટી ઈચ્છા છે। આખું જગત 3-14 બ્રહ્માંડ તો કોઈને પોતાની સત્તા નીચે આવે નહીં, છતાંય આવી જાય તોય તો એને ઓછું પડે, હાવ નાનું પડે, પરમાણુ જેટલું લાગે એટલી મોટી ઈચ્છા છે। ત્યારે અનંતા જીવોની બધાની ઈચ્છા જો આ સ્થિતિ હોય તો પછી લડાઈ ઘર્ષણ ફ્રિક્શન વર્ડભર હે આંતર વિગ્રહ આતંકવાદી ન હોય તો બીજું હોય શું જગતમાં, હે જગતમાં બીજું કઈ હોય જ નહીં। દુઃખના જ કારણો છે, એકાંતે સંસાર દુઃખનું કારણ છે। આ જ્ઞાનીઓ એ અનુભવથી સરવાળો માન્યો છે। એક હકીકત છે, વસ્તુ સ્થિતિ છે।
જેટલી ઈચ્છા હોય લાઈન માં આવ્યા તો કેસા રહે, જેટલી ઈચ્છા સંસારી લાઈન માં ઓટલી ઈચ્છા લાઈન માં આવ્યા તો કેસા રહે,
તો પૂર્ણતા કા ઈચ્છા ભાવના તો હોય કે પૂર્ણ હો જાય તો પૂર્ણ હો જાયગા। જો કોઈ ઈચ્છા ફલિત નહીં ફલવાન નહીં હોગી, ઇધર ફલવાન હો જાયગી, સર્વ દુઃખ મિટ જાયગા ઓર અનંત અનંત સમાધિ સુખમાં અનંત જ્ઞાન અનંત દર્શન સમેત નિરામય દશા હો જાયગી। એસી બાત હૈ, કિતના લાભ હૈ, મૂલ્યાંકન હોના ચાહીએ। સહી મૂલ્ય પ્રતિભાષિત હોવે તો ઉસકા કામ હો જાયગા, क्योंकि उसकी प्रायोरिटी बदल जाएगी। सही मूल्यांकन होगा तो ये प्रायोरिटी में आ जाएगा, मूल्यांकन नहीं होगा तो ये गौण हो जाएगा। बात तो समझ में आ जाएगी, सूक्ष्म है इसलिए, लेकिन इसकी मुख्यता हो पाएगी नहीं।
मूल्यांकन जरूरत से होगा, जरूरत से होगा मूल्यांकन तो।
हाँ ऐसा है, एक दर्शन वो ऐसा है कि उसको और जगह भी खींचता है अपना आत्म शांति के अलावा, जहाँ अशांति है वहां भी वो खिंचाविष्कार रह जाता है, यही तकलीफ है। इसलिए सबसे पहले है उसको बराबर ठीक करना चाहिए, यही बात है। क्या कहा, उपयोग लक्षण से स्फुरित आत्मा को देह तेजस कारमण शरीर से भी भिन्न अवलोकन करने की दृष्टि साध्य करके फिर आगे जाते हैं कि चैतन्य स्वभाव ऐसा हमारा आत्मा निरंतर वेदक स्वभाव वाला होने से जब तक अबंध दशा को संप्राप्त न हो जाए वहां तक वो साता असाता मैंने असाता दुख को भोगेगा भोगेगा और भोगेगा, भोगे बिना रह ही नहीं सकता। कोई कहे कि हमको पीड़ा आएगी और नहीं भोगना तो क्या करें, पेन किलर भी वहां निष्फल जाएगी, पेन किलर भी काम करती नहीं है, वो भोगे बिना रहेगा नहीं, ऐसा निश्चय करके, ऐसा निश्चय पहले करना पड़ेगा। जब ही असाता से दुख से असाता का दुख से छूटने का हमारा प्रयास चलेगा, निश्चय के बिना निश्चय बल मन में पुरुषार्थ नहीं आता है, विचार मात्र से काम नहीं चलता है, निश्चय निर्धार करने से इसका बल आता है, फोर्स आता है। इसलिए कहते हैं कि ऐसा निश्चय करके जो शुभाशुभ परिणाम धारा की परिणति द्वारा उस असाता असाता का संबंध करता है आत्मा, उस धारा के प्रति उदासीन हो करके, अब क्या लिया और सूक्ष्मता में लिया है कि जिस परिणाम से तू साता असाता का संबंध करता है उसी से उदासीन हो जा, उदासीन हो जा मैंने गौण कर दे उसको, इसकी मुख्यता करना ही नहीं है। किस कारण से हो पाएगा कि उपयोग लक्षण से जो स्फुरित है यहां आना पड़ेगा
बराबर,
क्योंकि ज्ञान में साता असाता का प्रवेश नहीं है
बराबर।
कोई अपने ज्ञान को अनुभव करने का कोशिश करेगा मुमुक्षु की भूमिका में, आत्मार्थी की भूमिका में, तो उसको लगेगा कि साता कोई दूसरी चीज है, स्वाद कोई दूसरी चीज है और वेदन करने वाला ज्ञान कोई दूसरी चीज है। जैसे हम रोज खाना खाते हैं, अनेक प्रकार के स्वाद के चीजें आती है खाने में, वो स्वाद अलग चीज है, उद्गल के पर्याय है, और जो ज्ञान ज्ञान है उसमें ज्ञान वेदन है वो भिन्न चीज है
बराबर।
स्वाद में ज्ञान वेदन नहीं
बराबर,
और जो ज्ञान वेदन करता है उसमें स्वाद नहीं है
बराबर।
है
बराबर,
ज्ञान के वेदन में कोई परमाणु का स्वाद है
नहीं है,
नहीं है। ऐसे ही असाता शरीर के पुद्गल के पर्याय, जैसे रोटी की सब्जी की दाल की मिठाई के पर्याय है परमाणु के, स्वाद लेने वाला वेदन करने वाला वेदन ज्ञान अलग है, इससे वेदन ज्ञान में वो स्वाद नहीं, स्वाद और स्वाद में वेदन ज्ञान जाता नहीं। ऐसे इस शरीर के साता असाता के जो पर्याय है उसमें वेदन ज्ञान जाता नहीं, ज्ञान वेदन उसमें जाता नहीं, पर ज्ञान वेदन में वो साता असाता आते नहीं, दोनों की सत्ता भिन्न भिन्न है। भिन्नता भेदन में ज्ञान भेदन में आए बिना भिन्नता अनुभव में आएगी नहीं, भिन्न है ऐसा विचार कर सकते हैं लेकिन उसमें भिन्नता का अनुभव नहीं होगा, क्योंकि जैसे राग में अनुभव करने का सामर्थ्य नहीं, ऐसे विकल्प में राग और विचार में भी अनुभव करने का सामर्थ्य नहीं, वेदन ज्ञान में अनुभव करने का सामर्थ्य है क्योंकि स्वयं अनुभूति स्वरूप है इसलिए, और एक ऐसी वस्तु वस्तु स्थिति है भीतर में कि ज्ञान वेदन में किसी द्रव्य भाव का प्रवेश होने का स्पर्श होने का आने का कुछ होने का गुंजाइश नहीं, अवकाश नहीं, ये वस्तु स्थिति है। ज्ञान उतना ज्ञान घन है क्या, ज्ञान वेदन स्वयं ज्ञान घन है कि उसमें अशाता वेदनी का प्रवेश नहीं हो सकता। जब अशाता वेदनी का उदय आता है किसी को तो उसको यही कहना पड़ता है, उसको कौन सी चर्चा करेंगे, जैसे किसी को अशाता वेदनी आ गई, बहुत असाता हो रही है, क्या चर्चा करें कि देखो सुना नहीं, देखो अंदर भीतर में देखो, ज्ञान वेदन में असाता वेदन है, असाता वेदनी ज्ञान वेदन में है कि नहीं है, असाता वेदनी में ज्ञान वेदन नहीं है, नजर नहीं आई तो और गौर से देखो और ध्यान से देखो, पता चल जाएगा ज्ञान वेदन की सत्ता में, ज्ञान की सत्ता में असाता की सत्ता नहीं है, असाता की सत्ता में ज्ञान की सत्ता नहीं है, भिन्न भिन्न सत्ता है, देखना है अवलोकन करना है सिर्फ विचार करना है। ऐसा अवलोकन करना यह स्वयं प्रयोग है, ऐसा अवलोकन करना यही प्रयोग है, और इस प्रयोग वही प्रैक्टिकल ज्ञान के प्रैक्टिस करना है, यही कर्तव्य है, यही कर्तव्य है, ऐसा कहते हैं इधर ये प्रयोग करना। तो असाता के काल में तो दूसरा लोग अपने को बुलाएगा भी नहीं, ऐसे खाते खाते तो कोई बातें भी कराएंगे, दूसरे दूसरे उदय में तो इधर उधर सब कुछ उपयोग को खींचने वाले मिलते हैं, असाता के उपदेश में तो कोई उसने बुलाएगा नहीं, क्योंकि तो उसको पीड़ा है, क्या बात करेंगे उससे, उसको तो पीड़ा है, तो वो दिखने वाले अपने को मुक्त रखते हैं, अपने को परेशान नहीं करते लोग, एक अच्छी परिस्थिति है, दूसरी दूसरी परिस्थिति में परेशानी होती है, लेकिन असाता के वेदन में दूसरों की परेशानी नहीं है, अगर हम चाहें तो अच्छी तरह से वेद ज्ञान का प्रयोग कर सकते हैं। और गुरुदेव कहते हैं कि प्रयोग और पुरुषार्थ साथ में रहता है, प्रयोग और पुरुषार्थ साथ में रहता है, जो पुरुषार्थ है वही प्रयोगात्मक कार्य कर सकता है, प्रयोग करता है उस वक्त पुरुषार्थ होता है, विचार में पुरुषार्थ का स्थान नहीं लिया है, परमागम सार है नीचे का नीचे वाला 403 नंबर का एक प्रश्न अमृत बहुत सुंदर है, इसलिए नहीं लिया है स्वाध्याय में कि ये बात गुरुदेव ने कही है, जो बिल्कुल निर्विकल्प दशा होने 403 नितिन सोचा होगा निर्विकल्प होने के पहले मुमुक्षु जीव की दशा ऐसी होती है, ये बात गुरुदेव ने इधर 304 के वचन में कही है कि इस वस्तु को प्रयोग में लेने के लिए अंदर में मूल में से पुरुषार्थ का उपाय आना चाहिए, प्रयोग और पुरुषार्थ के बाद एक सफाई के नहीं आई, वस्तु को विचार में लेने के लिए नहीं बोले, कृपा गुरुदेव ने अवलोकन शब्द लिया, गुरुदेव ने प्रयोग शब्द लिया। शब्द भेद है, भाव तो जो है सो है, एक ही प्रकार का है कि उसको प्रयोग में लेने के लिए तो साथ का मैंने जोर उतना फोर्स आना चाहिए
बराबर
अंदर में से, कैसा कि मैं ऐसा महान पदार्थ हूं जिसमें अनंत 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 एक एक शक्ति का अनंत सामर्थ्य, ऐसी अनंत शक्ति संख्या से भी ऐसा मैं महान पदार्थ हूं, ऐसे निरालंबन रूप से किसी के आधार बिना, निरालंबन रूप से मैंने विकल्प का साथ में चलने वाला विकल्प का आधार नहीं, किसी का आधार नहीं, देव गुरु शास्त्र किसी का आधार
नहीं,
संयोग की अनुकूलता प्रतिकूलता किसी का आधार
नहीं,
नहीं शरीर का आधार नहीं, विकल्प का आधार नहीं, निरालंबन रूप से है,
आत्यंतिक असंग हो
गया, हां आगे आएगा आत्यंतिक भी निकल के, उसमें कृपा गुरु के वचन में आत्यंतिक शब्द आए, ऐसे निरालंबन पने से किसी के आधार बिना एकदम उद्धार से, मैंने अपना स्वावलंबन से धुन चलते चलते, धुन चल जानी चाहिए स्वभाव के लक्ष्य में आने से, लक्ष्य पूर्वक अनुभव होता है तो जिसके लक्ष्य में आत्म स्वभाव वेदन पूर्वक आया है उसको ऐसी धुन चढ़ जाती है, ऐसी धुन चढ़ जाती है अपने स्वभाव की, और उतना रस आता है, आत्मरस उतना अंदर से आने लगता है कि उससे बाहर निकलना उसको गमे नहीं, चुचे नहीं, अच्छा नहीं लगे, धुन में रहना उसको अच्छा लगे, स्वरूप की धुन में चढ़ गया, फिर यहां से वो बाहर निकलता, निकलना चाहता
नहीं है।
अब विकल्प थोड़ा चालू है, विकल्प में निर्विकल्प नहीं हुआ है, इसकी बात है, अब विकल्प तो है परंतु ऐसा लगता है मैं ये हूं अपना लक्ष्य में आया हुआ, उसका अस्तित्व ग्रहण हो गया है तो ये हूं जो जाता है उस पर, ऐसे घोलन का जोर चलते चलते, घोलन अकेला नहीं, घोलन जोर के साथ घोलन चलता है, वो चलते चलते विकल्प छूट करके भीतर में उतर जाता
है,
ऐसे अंदर में उतर जाता है, ऐसे निर्विकल्प दशा हो जाती है, आंखें में ये स्थिति होती है, जिसको निर्विकल्प दशा सम्यक दर्शन होता है उनको आखिर में ऐसी दशा हो जाती है। तो उसके पहले क्या प्रयोग चलना चाहिए, ये बात है, इसके पहले प्रयोग कैसा चलता है, परिणमन में पुरुषार्थ कैसा चलता है, वो इधर बात दिया है 913 पत्र में। कि उस साता असाता के प्रति संबंध करने वाला जो परिणाम है उसके प्रति भी उदासीन हो करके, उदासीन होना माने क्या, जहां अपेक्षा वृत्ति है वहां उदासीनता हो नहीं सकती, जहां अपेक्षा वृत्ति छूट गई वहां उदासीनता हो गई, उपेक्षा वृत्ति हो गई कहो या उदासीनता हो गई, अपेक्षा और उपेक्षा आमने सामने प्रतिपक्ष में है, उदासीनता कहो या उपेक्षा कहो, इस वृत्ति की उपेक्षा करो, जो भी असाता के प्रति खिंचाव आता हो, असाता के उदय के काल में असाता के प्रति परिणाम का खिंचाव हो जाएगा, लेकिन उसकी उपेक्षा कर दो, ज्ञान में इसकी उपेक्षा कर दो, उसकी अपेक्षा मत रखो, ऐसे साता हो ऐसे असाता न हो, ऐसे साता हो ऐसे असाता न हो, ये छोड़ दो। तो इसके प्रति जो वृत्ति का अंश जाता है उसकी उपेक्षा हो जाएगी, अपेक्षा नहीं रही तो उपेक्षा होगी, अपेक्षा रही तो उपेक्षा उदासीनता
नहीं होगी।
जैसे हम सारा ट्रैफिक चलता है तो क्या अपेक्षा रखता है कुछ, हम रास्ते पर निकलते हैं कहीं पीछे से ट्रैफिक आता है कि आगे से आता है, आमने सामने दोनों ट्रैफिक चलता है, हम सवाल के सावधानी से चलते हैं तो पहुंच जाते हैं, क्यों कि ट्रैफिक से हमारी कोई अपेक्षा नहीं है, हमारी उदासीनता है,
कोई पूछेगा क्या क्या मिले रास्ते में आप आए तो, क्योंकि बहुत ट्रैफिक था, क्या मिले क्या, हमारी तो उदासीनता थी, हमारी कोई अपेक्षा नहीं थी कि क्या मिल रहा, कौन आता है कौन जाता है। इस तरह से ज्ञान में ये साता असाता वाला एक ट्रैफिक आता है बीच में, ज्ञान तो परिणमन कर ही रहा है, उसमें ट्रैफिक बहुत सा आएगा, उसकी उपेक्षा कर दो, उदासीनता कर दो। थोड़ा ये तो प्रश्न रहेगा कि तुम पीड़ा होती है हमको कैसे उपेक्षा करें, बात तो वो आएगी कि हमको पीड़ा होती है उनकी उपेक्षा हम कैसे कर सकते हैं, ये प्रश्न हो सकता है। लेकिन हमको होती है वही अपेक्षित प्रति है, क्या हमारे ज्ञान वेदन में होती है
ना,
ज्ञान वेदन में तो होती नहीं, फिर हमको होती है ऐसे अपेक्षा क्यों करते हैं,
यही अभी झूठा है,
ज्ञान वेदन में है ही नहीं, असाता में ज्ञान वेदन है ही नहीं, तो उपेक्षा करना सहज है, इसलिए उदासीनता के बाद पीछे लिया है कि उस परिणाम धारा की परिणति द्वारा साता असाता का संबंध करता है, उस धारा के प्रति उदासीन होकर के देहादि से भिन्न सब ले लिया, देहादि में सब कुछ ले लेना, चैतन्य स्वभावात्मक उपयोग लक्षण से स्फुरायमान हो रहा है ऐसा आत्मा, इस स्फुरायमान शब्द बहुत मात्रा लिया है, थोड़ा इसका भाव खोलने योग्य है, इस स्फुरायमान क्या कहते हैं, नया शब्द प्रयोग है अपना,
सवाल ने पूछा मग तो सवाल ने पूछा मग तो स्फुरायमान नो उलस्तो उलस्तो
उच्छलंती अरे छे ने शब्द
આપણે એક અનુભવથી પકડીએ, કે આપણે કોઈ સમસ્યા હોય, ગંભીર સમસ્યા કોઈ હોય, એસી કોઈ સમસ્યા હો કે જિસમાં બહુ તકલીફ હો જાને વાલી, બડી આપત્તિ કોઈ આને વાલી સમસ્યા હો, તો ક્યા હોતે પરિવારજન યા મિત્રજન જો ભી હમારે એમાં યા આત્મા મેં जो चल स्वभाव रूप परिणाम धारा है उसका भी आत्यंतिक वियोग करने का सन्मार्ग ग्रहण करके अब कहाँ आए, एक समय के पर्याय पर आ गए, भेदना कराते कराते कहाँ ले जाते हैं,
वो
ऐसे तो नहीं छोड़ देंगे तो बिल्कुल स्पष्ट करनी है कि अपने स्वरूप की मर्यादा में रहा हुआ यह आत्मा तो चल स्वभाव, क्योंकि वो तो अचल स्वभाव है, स्वरूप कैसा है, अचलित स्वभाव है, मेरे से भी अचलित, अचलित स्वभाव में रहा हुआ वो आत्मा में एक चल स्वभाव रूप परिणाम धारा चल रही है, उत्पाद 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 जो चल रहा है उससे उसका आत्यंतिक वियोग करना यही सन्मार्ग है। देखो ये ध्रुव में ले जाता है, अब ये बात आई ध्रुव, ध्रुव स्वभाव है उसको, उसमें अहम बुद्धि अहम भाव ऐसा हो जाए कि उत्पाद रूप जो परिणाम है वो परिणाम चल रहा है, सतत चल रहा है, इसलिए उसको धारा कहते हैं, परिणाम धारा कहते हैं, उससे आत्यंतिक वियोग, तो परिणाम कोई मिट जाएगा नहीं, परिणाम का अभाव नहीं हो जाएगा, लेकिन उसमें अहमपना अनादि से कर रखा है उसका वियोग हो जाएगा, कितना के अत्यंत, थोड़ा भी अपने पर्याय में अहमपना मालूम नहीं पड़े, यही दुख का कारण है। दुख का कारण क्या है, पर्याय में अहम भाव, जो त्रिकाल त्रिकाल निर्विकार है, त्रिकाल शुद्ध है, त्रिकाल पवित्र है, पर अनंत अनंत सुखमय है,
बराबर
ऐसा मैं हूँ, आ हूँ आ हूँ, नहीं आया वो अपने बोल में, आ हूँ आ हूँ, ऐसा महान पदार्थ में, वो ध्रुव की बात है,
बराबर
यही मैं हूँ, उसमें उतना आ जाए के परिणाम चल रूप जो चल रहा है उससे अत्यंत वियोग लगे, अत्यंत दूर लगे, वो ये मेरे से बहुत दूर है, क्यों बहुत दूर है, कि मैं अचल हूँ ये चलित है,
रहा है,
इतने चलित है, इतने चंचल है कि एक समय भी वो ठहरता
नहीं,
नहीं है, फटाफट चक्कर लगता है परिणाम का। जगत में कोई मशीनरी इतनी फास्ट नहीं चलती जितना परिणाम पदार्थ का चलता है। ये जो हमारी मैकेनिकल इंजीनियरिंग है उसमें तो रिवॉल्यूशन पर मिनट गिना जाता है, यूनिट जो है रिवॉल्यूशन का, चक्कर का जो यूनिट है वो पर मिनट का है, रिवॉल्यूशन पर मिनट कितने, भले 1,00,000 रिवॉल्यूशन पर मिनट हो, बाकी वो इलेक्ट्रिक मोटर का तो 914,440 ऐसा ऐसा ही आता है, लंबा नहीं है, जिससे वो मशीनें चलती हैं, कारखाने चलते हैं, उसमें तो कोई इतना रिवॉल्यूशन नहीं। लेकिन जो सूक्ष्म है उसमें बहुत आता है, रिवॉल्यूशन पर मिनट, फिर पर मिनट का है। यहाँ तो हमारी आत्मा 1 सेकंड में 1,00,000,000,000,000 से भी आगे, संख्यात से भी आगे, असंख्यात दफे चक्कर चला लेता है परिणाम का, इतना चंचल परिणाम धारा है, इतना परिणाम में रिवॉल्यूशन स्पीडी होता है।
प्रकाश से भी अधिक
है,
सूर्य का प्रकाश है,
उससे भी, ये भी 1 घंटे में कोई 2,000 मिल जाता है, ज्यादा नहीं जाता, 1 घंटे में नहीं, 1 मिनट में, ऐसे 1 मिनट में 2,000 मिल जाता है, ऐसा कोई है, ये भी कुछ नहीं है। ऐसे तो जीव पुद्गल की जो शक्ति है वो गति आगे की थी बात होगी, वो तो एक समय में 14,000,000 जाने की है, लेकिन ये तो पर्याय से पर्याय अंतर होने की बात है, अवस्था से अवस्थांतर होने की बात है, परिणाम से दूसरा परिणाम हो जाए, कितना स्पीड में, 1 सेकंड में असंख्य बार, 1 सेकंड में असंख्य बार, इससे उदास हो जाओ, उसका अत्यंत वियोग कर दो, अत्यंत वियोग मैंने में हुई नहीं। सुगानी जी बहुत सरल प्रश्न देते थे कि पर्याय बुद्धि में आत्मा को अनंत दुख कैसे है, कैसे अनंत दुख, इसका एक दृष्टांत देते थे 2 प्रकार के, एक तो रुई का दृष्टांत देते थे कि रुई को ऐसा पीनते हैं ना गद्दा बना के लिए, गद्दा बनाने के लिए इसको पीनते हैं, तो उसके तांत तांत अलग अलग करते थे, इतना रुई को मारते हैं इसे, ऐसे हम एक एक परिणाम में अहम बुद्धि करके हमारा त्रिकाल अचल अखंड स्वभाव है, स्थिर स्वभाव है, उस स्थिर स्वभाव को चुप करके एक समय में 1 सेकंड में असंख्य बार परिणाम में अहम कर लेते हैं, रुई की जैसी हमारी दशा है। ऐसा पिंजर होता है,
हाँ जी,
तो पिंजर कहते हैं हिंदी में, पिंजर कहते हैं क्या कहते हैं, रुई को पिंजर कहते हैं, ऐसा ऐसा पिंजर हमारा परिणाम में होता है, और एक वो कहते थे क्षेत्र अपेक्षा से कि हमारा स्वरूप तो त्रिकाल है, अनादि है, और हम एक समय के पर्याय में अहम करके आ जाते हैं, तो एक 5-6 फुट का मनुष्य शरीर को 2 फीट की पेटी में रख करके पैक कर देता, इतना हमारा विस्तार है कि हम त्रिकाल अनादि अनंत है, हम एक समय में आ जाते हैं पर्याय में,
अजीब है,
कितना दुख होगा,
अनंत
दुख होता है, पर्याय दृष्टि में मिथ्या दृष्टि को अनंत दुख होता है, ऐसे ये परिणाम दृष्टि को खत्म करने की बात है, इधर सारे ग्रंथ में ये बात इस जगह आई है, जो परमागमों में जो बात आती है वो इस जगह आती है कि चल परिणाम धारा का अत्यंतिक वियोग करना यही सम्मार्ग है, ये भी होगा तो पर्याय में, फिर भी अहम बुद्धि नहीं है इसमें, अहम बुद्धि त्रिकाली ध्रुव में हो जाती है, ऐसा सन्मार्ग ग्रहण करके परम शुद्ध चैतन्य स्वभाव रूप प्रकाशमय यह आत्मा कर्म संयोग से स्वकलंक परिणाम प्रदर्शित करता है,
उससे उपराम हो करके ये विभाग से निकाल लिया। चार मुद्दा लिया है भेद ज्ञान का। एक लिया है भिन्न करने का, देहादि से सभी देह को भिन्न जानने का, भिन्न अवलोकन करने का। दूसरा लिया है वेदन से भिन्न करने का। तीसरा लिया है आत्मा प्रकाशमय है, तो प्रत्यक्षता को लिया है। और चौथा लिया है स्वरूप मर्यादा वाला जो है वो व्याप्त व्यापक भाव लिया है। मैं अपने स्वरूप में व्यापक हूं इसलिए मैं मेरे में तन्मय हूं, मेरा मेरी व्यापक व्यापकता मेरे से कहीं बाहर नहीं है। और इधर लिया है परम शुद्ध चैतन्य स्वभाव रूप प्रकाशमय आत्मा है, वो प्रत्यक्षता लिया है। प्रकाश शक्ति जो है वो स्वसंवेदनमयी है और स्वसंवेदन में वेद्य वेदक अपना, वेद्य भी अपन है वेदक भी अपन है। कोई अलग वेदने लायक कोई अलग पदार्थ नहीं, वेदन करने वाला भी कोई अलग नहीं है, हम ही वेद्य वेदक रूप होने हैं। वहां प्रत्यक्षता है और वो स्वसंवेदन में अनुभव रूप होती है। तो वो कहां से हुई कि वस्तु ऐसी है, तब क्या आत्मा ऐसी है परम शुद्ध चैतन्य कर्म योग से सकलंक परिणाम को दर्शाते हैं, उसको उससे विराम हो जाना, उपराम हो जाना है, उसकी थकान आ जानी चाहिए। जो भी सकलंक परिणाम है, औपाधिक भाव जितने भी हैं, विकल्प रूप भाव जितने ही हैं, उससे उपराम हो जाना, शांत हो जाना, विराम, थक गया मैं, विकल्प करते 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 मैं
थक गया,
ये बना दीजिए। क्योंकि दुख है इसमें
बराबर।
कोई अपने को कहे तो तुम उपदेश करते रहो या ठेकड़ा मारता जा, मारता कर रहे हो कितना दिन कितना कितना कलाक चाले, थोड़ी मिनट में शांत हो पड़े, प्रेम शिक्षा करे, चलो कुत्ते रहो कहां तो कूदेंगे, थक जाएंगे थोड़ी देर में, थक जाएंगे। अब ये विकल्प की जो कुदाकुद है उसमें क्यों नहीं थकते हो, अनंत काल से ये कुदाकुद चल रही है, अब भी थकान नहीं आती है, कैसी बात है। तेरी कूदने की शक्ति भी अनंत है, अनंत अनंत काल से कूदता है अब भी थकान नहीं लगती है, कैसी बात है। उपराम हो जाता है,
इससे शक्ति का पता चलता है,
शक्ति का पता चलता है, अनंत काल शक्ति अनंत है। प्रयोग उल्टी करो या सुनती करो, शक्ति अनंत है। जैसे ये पावर है, कोई लट्टू भी जलेगा, पंखा भी फिरेगा, हमारा हीटर भी चलेगा और रेफ्रिजरेटर भी चलेगा, एक साथ सब होगा, गर्म भी वो करता है ठंडा भी वो करता है, क्योंकि वो तो शक्ति है। उल्टी करो या सुनती करो, शक्ति तो शक्ति है,
शक्ति में गर्मी और ठंडी नहीं है,
शक्ति में गर्मी ठंडी नहीं है। अगर शक्ति गर्म होती तो आइस बनता नहीं रेफ्रिजरेटर में, ठंडा होता नहीं, और ठंडी होती तो गीजर में पानी गर्म होता नहीं।
यानी अपने हिसाब से कन्वर्ट कर लेते
हैं,
हमने कन्वर्ट कर लिया स्वभाव में,
तो हमारी शक्ति को हमने विकल्प के कुदाकुद में कन्वर्ट कर लिया, तो अनंत काल से कूदते हैं तो भी थकान नहीं लगती है।
अभी कोई इसमें
अब तो थोड़ा ध्यान दो कि ये जो परिस्थिति है उसको विप्राम करनी है, शांत हो रहा है, उसमें उसमें से थकान आ करके उसकी शांतता करनी चाहिए हमें। दुख से छूटना हो तो बात है, उपराम हो करके जिस प्रकार से मैंने यथार्थ प्रकार से उपशमित हो सके, उपशांत हो जाए, अंतर्मुख हो जाए, ऐसा जैसे यथार्थ रूप से हो जाए। वह उपयोग में और वह स्वरूप में स्थिर हो सके, हो जाए, अचल हो जाए, वही लक्ष्य, वही भावना, वही चिंतवना और वही सहज परिणाम रूप स्वभाव करने योग्य है। आ कर्तव्य का बात लिया,
बराबर
ऐसा ही कर्तव्य है कि इस से उपराम हो करके, सकलंक परिणाम से उपराम हो करके, जैसे वो सकलंक परिणाम क्या है, वो तो एक तनाव है, दुख है, उससे शांत होने की बात है ना, उससे उपराम हो करके जैसे यथार्थ रूप से उपसमित हुआ जाए, उपयोग में और स्वरूप में स्थिर हुआ जाए, शांत हुआ जाए, अंतर्मुख हुआ जाए और उपयोग में और स्वरूप में स्थिर हुआ जाए, अचल हुआ जाए, वही लक्ष्य, वही भावना और वही चिंतना है। इसका मतलब कि आगे पीछे दूसरी बात को छोड़ देना, सब अप्रयोजन होता है। अपना वही लक्ष्य होना चाहिए, वही भावना हमारी हो चाहिए, वही हमारा ध्यान और लक्ष्य होना चाहिए और हमारी कुछ चिंतन ना हो तो इसकी ही चिंतन ना होनी चाहिए, दूसरी चिंता हमें होनी चाहिए
नहीं,
क्योंकि दूसरी चिंतना हम फालतू करते हैं, हमारे आत्मा में कुछ होने वाला
नहीं है।
ये जो संयोग से लोग दुखी होते हैं उसका एक दृष्टांत दिया है दीपचंद जी साहब ने अनुभव प्रकाश में, कि जैसे कोई बच्चे लोग होते हैं, पितल वृत्ति बहुत होती है बच्चों में, कोई बंदर छोटा मोटा होता है, उसको कंकर लगाते हैं, उसको कंकर बहुत लगता नहीं है क्योंकि उसको तो चमड़ी भी परमाटी भी ज्यादा है, थोड़ा भी उसको कांकरे लगता है तो तीन दफे तो ऊपर चढ़ता है, तीन दफे नीचे आ जाता है। ऐसे हमारे आत्मा को तो उतनी लगती नहीं है। क्या बाहर के संयोग साता साता कुछ भी उतना भी हमारे आत्मा में कंकर जैसा भी स्पर्श नहीं है, फिर भी हमारी जो हालत है बंदर से भी ज्यादा चंचल हो जाती है। तो दृष्टांत दिया है दीपचंद जी ने, तो क्या है कि वो अचली स्वभाव है, उसको अवलोकन करके उसको विजुलाइज नहीं किया है कि मैं ऐसा अचल हूं, ऐसा अचल हूं, ये भीतर में नहीं किया। यही भावना, यही चिंतना करने योग्य है, दूसरी कोई चिंतना करने योग्य
नहीं
है, नहीं है, दूसरी कोई चिंतना मत कर, क्योंकि तुझे कुछ होने वाला नहीं है, जो भी होगा सो होगा, तुझे कुछ होने वाला
नहीं है,
हो सकता ही नहीं, फिर कैसे होगा। ये जो अखंड पदार्थ है, अभेद्य पदार्थ है, उसको कुछ हो ही नहीं सकता। अव्याबाध स्वरूप है, स्वरूप तो स्वरूप से ही अव्याबाध है, बाधा करने की पहुंच किसी को भी नहीं है, वहां इसको किसकी भी इतनी पहुंच नहीं है कि वहां बाधा हो जाए इसमें। इसलिए ऐसा सहज परिणाम करने योग्य है, सहज स्वभाव रूप ऐसे परिणाम करने योग्य है, मतलब होने योग्य है। महात्माओं की बार बार यही शिक्षा है, क्या कहा, यही उपदेश है, तीर्थंकरों का भी यही उपदेश है और हमारे आचार्य आदि श्री गुरु का भी यही उपदेश है कि ऐसा ही कर्तव्य है, दूसरा कुछ कर्तव्य जीवन
नहीं,
में
नहीं
है, यही जीवन में कर्तव्य है, इससे ही सुख शांति आएगी पूरी की पूरी। यही महात्माओं की शिक्षा है, उपदेश है, शिक्षा है माने उपदेश है। तो ऐसे परिग्रह करना पूरा होता है, ये सारी बात परुदेव ने भीतर में वेद ज्ञान के प्रयोग के लिए उसमें द्रव कर्म, भाव कर्म, नौ कर्म और एक समय के चल परिणाम रूप जो पर्याय है वो से हट करके त्रिकाली में आ जाओ, अज्ञान करके ध्रुव में स्थिर हो जाओ। यही लक्ष्य, यही भावना, यही कर्तव्य है, यही सबों का उद्देश्य है। ધાતુરુ થાય છે, જ્ઞાનમાં અહમ બુદ્ધિ થાય છે અને ચારિત્ર સ્થિરતા થાય છે। આ સમ્યક દર્શન જ્ઞાન ચારિત્ર ને મોક્ષ માર્ગ છે। કોઈ સંયોગો થી દુઃખી ન થવાય આ રસ્તો છે। ગમે તેવા સંયોગો હોય દુઃખી ન થવાય એવો આ રસ્તો છે।
એટલો સરળ ને સીધો ને ચપાટ
વ્યવહાર છે। યે વ્યવહારિક ઇસકા દૃષ્ટિકોણ એને વ્યવહાર મે પ્રેક્ટિકલ લાઈફ મે હમે શાંતિ મિલને કે લિયે યે રસ્તા બતાયા હૈ કે ઇસ રસ્તે સે મોક્ષ માર્ગ ભી કે દોનો મિલતે હૈ।
મોક્ષ માર્ગ તો મિલતા હી હૈ। તો મોક્ષ માર્ગ મિલે તો ફિર સંસાર મે તો પ્રેક્ટિકલી સુખ હોઈ જાયેગા। इतना लोकोत्तर सुख की प्राप्ति होती है तो फिर लौकिक में दुख कहाँ से रहेगा। तो लौकिक में दुख तो कैसे क्यों होता है कि जहाँ अपनत्व है वहाँ उपाधि है, वहाँ भय है, सब प्रकार के जो दुखदायक परिणाम है वो तो अपनत्व होने से है, आधार बुद्धि है वो तो छूट जाती है। फिर प्रैक्टिकल लाइफ में हम कैसे दुखी होंगे। जैसे हमको असात आया तो प्रैक्टिकल लाइफ में हम असाता को वेदन नहीं करते, ज्ञान का वेदन करते तो सुखी हुए कि नहीं हुए।
नहीं, कोई कोई लोग बोलते हैं कि ये प्रैक्टिकल शांति के लिए यह रास्ता हमें शास्त्रों में बताया गया है। मोक्ष मार्ग मिलता कि नहीं उससे मुक्ति यानी हो जाती कि नहीं वो मालूम नहीं होना। बोलते हैं कि
प्रैक्टिकल मार्ग है, ज्यादा सांसारिक जीवन में भी हम दुखी नहीं होंगे और पारलौकिक जीवन में भी हम दुखी नहीं होंगे। दो सब में सुखी एकांत सुखी होने का रास्ता है। संसार का भी दुख नहीं होगा और दूसरा भी कुछ दुख नहीं होगा, किसी भी प्रकार का दुख नहीं होगा। इससे बड़ा प्रैक्टिकल कौन सा हो सकता है। तो आप बताइए कोई समस्या हो तो उसका निकाल हो जाएगा। तो हमको तो ये समस्या इसका दुख नहीं मिटता है, एक सेकंड में छूट जाएगा। किस सिद्धांत से, इस विचारधारा से, इस प्रयोग से एक सेकंड में छूटता है, दूसरे सेकंड में ऐसा लगता है। बात तो है कि वो अपना नहीं है, उसमें अपने पकड़ते हैं, ये सभी आपत्ति का कारण जो है उतना ही। जब शरीर हमारा नहीं तो विकल्प छूटते हैं, वो भी हमारे साथ नहीं रहते। शरीर भी रहना, अब किस किस को साथ में रखना है, तो किसकी सावधानी करना है कि जिस सावधानी से स्वरूप की सावधानी छोड़ देते हैं कहीं भी दुखी होने का जगह ही नहीं है ना। कोई भी समस्या नहीं रहती, एक भी समस्या नहीं रहती, सर्वांग समाधान आता है ऐसा मार्ग है।
असंगी मां संगी दे, असंगी मां संगी दे, पर्याय पति की बात।
मान लिया कि उनको अगर ये रास्ते से जाएंगे उनको मोक्ष मिलेगा, फिर दूसरा स्थान श्रावक को दिया है और तीसरा स्थान अर्धिका को दिया है। तो अर्धिका के व्रत नियम सब तो ज्यादा होते हैं, तो श्रावक के पीछे उनका क्यों नंबर लगाया।
इसको के श्रावक है वो मुनि हो सकता है, अर्धिका मुनि पद में आ नहीं सकती है। उसका इसका पुरुषार्थ भी नहीं चलेगा और बाया अपना चलेगा, त्याग भी इतना नहीं हो सकता। इसलिए
तो नहीं हो सकता,
पर जो भेद ज्ञान है वो तो सब अधिकारी पंचम गुण स्थान तक आती है, उसको छठा सातवां नहीं आता, पंचम गुण स्थान तक वो आ जाती है तो उतना सुख उसको मिलता है। और तो उस पर्याय की बात है, लिमिटेड पीरियड की बात है, पर्याय तो कोई शाश्वत है नहीं, छूट जाएगी आगे हो जाएगा उसका दशा भी आ जाएगी, निर्वाण दशा भी आ जाएगी, इसी आत्मा को आ जाएगी। अर्जिका मैंने कोई आत्मा अर्जिका थोड़ी है, तो उसकी एक पर्याय है जिस अपराध से कुछ काल तक उसके पुरुषार्थ की जो मर्यादा है वो सीमित रह जाती है, उतनी बात है। भान तो उसको आत्मा का पूरा आ गया है, तो उस पर्याय तक जहां तक आयु इसकी है स्त्री पर्याय की, उस आयु तक उसका पुरुषार्थ सीमित रह जाएगा, पंचम स्थान से आगे नहीं जाएगा। फिर वो पर्याय छूटने से फिर इसका पुरुषार्थ कितना भी हो सकता है, तो पहले तो स्वर्ग में जाएगी, स्वर्ग में उस त्रिपर्याय में नहीं जाएगी, वहां उसका चतुर्थ स्थान होगा, पंचम भी नहीं रहेगा, क्योंकि वहां ऊपर स्थिति नहीं है, वहां इतनी झंझटे बहुत है, आज जो पैसे वालों के इससे भी ज्यादा है, आज पैसे वालों को जैसे फुर्सत नहीं है ऐसे वहां भी फुर्सत मिलने का मौका कम है, ऐसी हालत है, तो चतुर्थ से आगे नहीं जाता वहां। तो फिर जो है मनुष्य होकर के वो कितना भी काम कर सकता है, निर्वाण पत्थर का 14 गुण स्थान पूरा करके सिद्धालय में जा सकता है।
सदगुरु આવું મોકો કેવી મળે આવું તમે
ज्ञान का सत्संग मिल जाए तो परम सत्संग है, इस काल में इसकी संभावना बहुत कम है, इसलिए तो फिर क्या करके जो एक मार्ग पर चलने वाले अच्छी रुचि वाले हो, जिसको आत्म कल्याण के बहुत भावना हो, आत्म प्राप्ति की भावना वाले जो ऐसे मोक्षों को के साथ उसको मिल बैठेगा, यहां से अपने आत्मरुचि की पुष्टि हो, पोषण मिले, क्यों कि वास्तव में सत्संग में मोक्ष क्या करता है, ये जो अपने आत्मरुचि जगी है उनको उसमें यहाँ से पोषण मिलता है
जी,
रुचि पुष्ट होती रहती है, रुचि बढ़ती है, तो दर्शन और उसका अनुभव छूटता जाता है, और दर्शन जैसे जैसे दर्शनों का अनुभव करता है वैसे ज्ञान में निर्मलता मुमुक्ष की भूमिका से होने लगती है। तो ज्ञान निर्मल होने से प्रतिभा आने की क्षमता आ जाती है, ऐसे ही प्रोसेस है उसका, नास्ति में दर्शन मोह का अनुभव कटना, अस्ति में रुचि और ज्ञान की निर्मलता बढ़ना, अपना ध्येय तो प्रवृत्ति खोज का प्रयास तो चलता ही है, इसलिए पदार्थ का लक्ष्य होने का भावना का प्रश्न आता है।
सामूहिक स्वाध्याय में तो क्या है कि एक जना बोलता है तो और सब सुनते हैं और धारा प्रवाह चलता है, तो उसमें तो इतना ऑब्जर्वेशन का इतना वो नहीं रहता है, उसमें तो ऑब्जर्वेशन का इतना टाइम नहीं रहता, अवकाश नहीं रहता है कि एक विषय को हम थोड़ा डीप में ले जाए, उसमें तो पूरा सुनना सुनने का रहता है,
अपना ऑब्जर्वेशन का टाइम नहीं रहता है, ऐसा कहता है
जी, पूरा सुनना पड़ता है उसमें तो, लेकिन अलग से सत्संग में तो ये अवकाश रहता है,
सुनते हमारी रुचि का जो विषय सुनते हैं उसमें हमारी रुचि पुष्ट होती है कि नहीं होती है, उसमें ऑब्जर्वेशन क्या करने का है
जी,
जो हमारी रुचि पुष्ट होती है इसका अनुभव हमें नहीं होगा क्या,
होगा
बस वही वही सुनने के बारे में तो वही होता है, होना चाहिए
होमवर्क करने के लिए तो
आप फिर होमवर्क करने के तो सारा दिन पढ़ाई है, पर अच्छा है आपको सुनते सुनते होमवर्क करना है तो फिर ध्यान करो, तो वहां तक पहुंचे तब करोगे जी बेटिया बेटियों का स्टेज ही नहीं आया है तो क्या करोगे
जी।
तो उस वक्त तो रुचि का पोषण होगा। तो वेदियन का स्टेज आ गया तो आप कोई भी प्रसंग में आप वेदियन करो ना का प्रसंग हो कोई भी उदय हो वेदियन करो इसमें कौन मना कर सकता है। तीर्थंकर की दिव्य ध्वनि सुनते सुनते जो अंतर में लीन हो जाते हैं मुनि बार बार दृष्टि भी हो जाते हैं तो सुनने का बंद हो जाता है
जी।
उसको तो कुछ सुन नहीं पाते ईश्वर सुनने का नहीं रहता है तो उसमें कोई अपराध है क्या
नहीं
है क्यों तो यही तो कहा था अंतर्लीन होने का तो भगवान कहते थे जो तो कहता था वो कर लिया तो उसकी आज्ञा को अंगीकार कर ली तो ये उसने सच्चा सुना और सुनता ही रह गया ऐसे मुंह सामने रख करके लक्ष्य सामने रख करके कोई वो कोई सुनने का उतना ही करना उसका नाम सुनने का है ऐसा तो कोई बात नहीं है।
जिन्हें रुचि नहीं खानी है इन्हें तो इन्हें पोषण में इतना सांभव में ध्यान आपको चाहिए ना
इन्हें रुचि जागे जिसको रुचि नहीं है
वो ठीक है चलो
हाँ वो रुचि उसको बढ़नी चाहिए रुचि तो बढ़ती जानी चाहिए और भावना समझने से अनन्य रुचि उत्पन्न हो जाएगी स्वरूप की वहां तक उसके पहले भी रुचि बढ़ती जानी चाहिए बढ़नी चाहिए।
मैं अबे सवाल नंबर थे एक और आठ दोनों दिन सत्य से क्या था ये बात थी तो ये प्रयत्न करवा के तो रुचि पता नहीं क्या बदे ये इतना संभव में बदरे लक्ष्य देव ये इतना रहूँ
सा और क्या ये वो तो वो एक की बात तो वो थी तो लक्ष्य पहले से बांधा नहीं उनका का लक्ष्य हुआ नहीं
जी
तो दूसरा दूसरा करने में समय व्यतीत होता है तो कोई फायदा तो होगा नहीं जो इसकी मुमुक्षुता की जो लाइन है वो तो मिलेगी नहीं इसलिए क्या है कि हम आगे आगे की बात करते रहे पर पहले की बात ऐसी छूट गई क्या वो तो अभी चर्चा चली है अपने चला तो हैं तो बाकी चलती ही कहाँ है ये विषय ही नहीं है हमारे यहाँ का सूत्र गुरुदेव का रह गया दीवार पर सूत्र को दिया और रह गया स्वामी की दीवार पर सारे समाज में इस विषय की कोई छान बीन चर्चा कुछ नहीं देखी जाती सुनी नहीं जाती क्या बात है क्यों ऐसा हुआ कि आगे आगे की बात में हम और दिलचस्पी लेने लगे समझ में जो कौतूहल वृत्ति है तो हम हमारी कुतूहल वृत्ति को हम पोषण देते हैं
भाई प्रयत्न भी रास्ता टूटे है भले एक साथ एक सतत प्रयत्न नहीं करते पर रस तो टूटे है
रस टूटता हो तो अच्छा है तो वो फिर आ जाएंगे इधर
जी
रस टूटेगा अभी अभी तो ये लक्ष्य क्यों नहीं बनता है रस पड़ा हो और जगह है
बराबर
रस क्यों पड़ा है सुख बुद्धि है इसलिए पड़ा है
जी बिल्कुल
अपेक्षावृत्ति से पड़ा है
अपेक्षावृत्ति
हाँ अपेक्षावृत्ति के कारण से है मुफ्त में नहीं है ये हालत है उसका स्टडी तो करना पड़ेगा अवलोकन में क्या करोगे इसका तो अभ्यास करना पड़ेगा कि कहाँ फंसाऊँ कैसे फंसाऊँ उसी का नाम को तो अवलोकन है उसी का तो रस तोड़ के मूल जगह पर आ जाना है क्योंकि काम तो काम के ढंग से होने वाला है दूसरे ढंग से तो होगा नहीं
स्पंदन
छे वो तो कंपन है कंपन मैंने हिलना कांपना
कर्म करता ना योगी कंपन है
हाँ वैसे इतनी अशुद्धि के कारण से
अशुद्धि
अशुद्धि के कारण से स्थिर योग नहीं करता ये भी एक प्रकार का विभाव है
विभाव कई प्रकार के हैं, सभी गुण के तो मुख्य मुख्य गुण है इसके विभाव है, जो स्वभाव से विकृत है उसी को विभाव कहेंगे। तो अकंप स्वरूप स्वभाव से तो अकंप है, पर्याय में भी अकंपता आ जाए तो सिद्धत्व हो जाएगा। चौदह गुण स्थान तक है ये, तेरहवें गुण स्थान तक है, चौदहवें से स्थिरत्व आकर के सिद्ध हो जाएगी तो हो जाता है। योग गुण की विकृति है,
योग क्योंकि चौदहवें तो बीच का जो समय है शैले की तरह वो अकंप स्थिति शैले की तरह।
सबसे बड़ी प्रॉब्लम हमारी ये है कि अपनी कल्पनाओं को नहीं छोड़ना चाहते हैं। सबसे बड़ी प्रॉब्लम हमारी ये है कि अपनी कल्पनाओं को छोड़ना नहीं चाहते।
अच्छी लगती है कल्पना, तब तो नहीं छोड़ते
जी।
उसमें सुख है या दुख है इसके तलाश करो, इस कल्पना में सुख है कि दुख है, आकुलता है या शांति है, क्या शांति है ये देखो, इसकी जांच करो। अनंत काल से कल्पना तो करता है जी, ये तो आत्म शांति का रास्ता है, जिसको आत्म शांति चाहिए उनको एडमिशन मिलता है, आत्म शांति नहीं चाहिए इसका तो प्रवेश ही नहीं होगा इस लाइन में।
चाहिए लेकिन मुफ्त में चाहिए लेकिन मुफ्त में चाहिए।
किसी कीमत पे आत्म शांति लेना है इसका काम, किसी भी कीमत पे ऐसा मुफ्त में क्यों लेंगे, कोई बाहर में तो कोई मुफ्त में चीज देते हैं तो लेते हैं, पर हम तो मुफ्त में नहीं लेते ऐसा ही कहेंगे क्या कहेंगे,
स्वाभिमान आ जाता है।
मुफ्त में नहीं अशांति में राखी में शांति जो है।
ये भी सही कह रहे हैं, सही कह रहे हैं, शांति रख के शांति चाहते हैं।
हाँ शांति को रखना है, शांति चाहिए
कैसे बने,
संभव है।
दिन भी चाहिए रात भी चाहिए, दिन भी चाहिए रात भी चाहिए,
हो सकता है क्या,
तीन काल में कम नहीं है।
अंतर भेद न रहे तो मुमुक्षुता एक प्रथम चरण है। 751 पत्र ने अपेक्षा चली गई कोई थे संकित नो बीज छे प्रत्यक्ष कारण गणित प्रत्यक्ष संकित तेने भाखियों कारण गणित प्रत्यक्ष सत्तरवीं गाथा है। प्रछंद मत आग्रह सजी वर्ते सदगुरु लक्ष्य संकित तेने भाखियों, संकित का तो बीज आ गया है। अंतर्भेद मैंने परायापना नहीं रहता, जैसा कहते थे हम तो एक हो गया है, आपस में कोई गिनती नहीं, कोई अन्यपना नहीं, जैसा अंतर मैंने दूरी नहीं, भाव के भाव से दूरी हट जाती, क्षेत्र से दूरी तक ये सवाल भाव से दूरी मिल जाती है छुट जाती है। उसको तो वो दिखते हैं परमात्मा रूप परमेश्वर रूप दिखते हैं, क्योंकि वास्तव में उनका जो अंतरंग है उसको देख लिया है, अंतरंग में तो परमात्मा विराजमान है, उनके परिणाम तो अपने परमात्मा के प्रति लग रहा है, जो परिणाम लग रहा है वही स्वरूपाकार परिणाम है, स्वरूप में लगने वाले परिणाम भी स्वरूपाकार हो जाता है, परमात्मा का दर्शन होता है। इसलिए तो 254 में बोला कि ज्ञानी में परमेश्वर बुद्धि ये परम धर्म है, सत्पुरुष में परमेश्वर बुद्धि ये परम धर्म है, ऐसा लिखा है। मुमुक्षु के लिए ये पहला होना चाहिए, फिर दूसरा संकेत आएगा भाववासन वाला, फिर तीसरा संकेत आएगा निर्विकल दशा वाला, तीनों का संकेत बोला है, एक दूसरे का कारण है। इसलिए यहां से प्रगट स्वभाव देखा, जो परिणति है वो प्रगट स्वभाव रूप है, स्वभाव प्रगट हुआ है, आत्मा प्रगट हुआ है, स्वभाव प्रगट हुआ है, आत्मा प्रगट हुआ है। जब आत्मा प्रगट हुआ है तो इधर जो सामर्थ्य रूप परमात्मा है उसका भावभाषण होने की योग्यता भीतर में आ जाती है, ऐसा एक कारण बनता है।
उनका निश्चय होने से हमारे परिणाम बदल जाते
हैं। हाँ, परिणाम बदल जाते हैं, निश्चय होते ही परिणाम बहुत बदल जाते हैं।
अज्ञान में असक्ति या सुख हो जाते हैं, क्या हो जाते हैं, किस तरीके से बदल जाते हैं,
वो तो फिर वो होना पड़ता है। उनका अनुभव का विषय तो अनुभव से ही जाना जाता है, तो तर्कबाजी का काम है।
सजीवन मूर्ति ना लक्ष्य
उनके बंधन से, सही बात है। ऐसे ही हमारे यहाँ गोपाल देव के जो हमारे साधन में लोग हैं वो प्राय ऐसा कहते हैं, उनको तो गोपाल देव साक्षर देव ही प्रत्यक्ष है, तो परोक्ष होते हुए भी प्रत्यक्ष ले लेते हैं, तो बंधन होता है। तो कैसे बंधन होता है कि प्रत्यक्ष को हम इच्छते नहीं, चाहते नहीं, फिर संतुष्ट हो जाते कि मिल गया, तो फिर प्रत्यक्ष का आदर नहीं रहेगा। हम कृपालु देव को ही कहेंगे कि अब तो आप नहीं आएंगे तो चल जाएगा हमारा, क्योंकि आपके पत्र तो है हमारे पास, ये बात हो जाएगी।
कितनी महत्वता है प्रत्यक्ष, यानी प्रत्यक्ष की कितनी महत्वता है।
प्रत्यक्ष की तो अभिप्राय विरुद्धता हो गई है। क्या हुआ अभिप्राय विरुद्धता है, कि प्रत्यक्ष नहीं होगा तो मैं तो कल्याण कर लूंगा, मेरा सत्पुरुष नहीं प्रत्यक्ष होगा तो भी मैं तो मेरा कल्याण कर लूंगा, ये अभिप्राय विरुद्धता है। उसमें देव गुरु शास्त्र सत्पुरुष सबों का अनादर है, अभक्ति है, अभिनय है, सब कुछ है, इसमें ये हो जाता।
अत्यारे भूल थती हुई कृपा देव क्या थी के भाव से
कोई बात नहीं समझे, ऐसे पड़ी है
जी,
कौन बताएगा। जिनको कृपालु देव के पत्र मिलते थे सौभाग्यवान थे वो
जी,
तो क्या वो ऐसे संतुष्ट हो जाते थे, ठीक है इनका पत्र तो आ गया, अब नहीं मिले तो कोई हरकत नहीं है, चलेगा हमको, ऐसा हो सकता है। जिसको पत्र लिखा है उसको नहीं होता है तो हम तो कहां बैठे और कहां मानते हैं, पुस्तक बार बार चिट्ठी होता है, कब हमको मिलेगा, कब हमको मिलेगा, ये बात होती है। कुदरत बंधी हुई है, कुदरत बंधी हुई है।
पोते पद लिख्यू नहीं,
ऐसा हमारे बहुत जीवन प्रसंग बना है कि हमारे जो न्यालचंद जी सुगानी थे, उनके बड़ा लड़का आए थे, हम उस भाई गए थे, चले गए, कल सुबह गए तो वो तो बहुत छटपटाते थे, उतने छटपटाते थे कि उसको जिंदा रहना मुश्किल हो गया। सब पुरुष कौन है, कहाँ है, कोई पता नहीं था, मार्ग मिलता नहीं था। ध्यान का आक्षेप भी इतना किया था पंडितों को, सरता शास्त्र स्वाध्याय इतना किया था, पूजा भक्ति इतना किया था, बहुत धुने थे, जो भी करते थे पूरे लग जाते थे, इससे कुछ सारे धंधा को खो बैठे, परिवार को आजीविका का प्रश्न समस्या खड़ी हो गई, सब हो गया। लेकिन उनको क्या है कि उसने धुन छुटती नहीं थी, आत्मकल्याण के लिए इनकी जो धुन थी वो छुटती नहीं थी, बंदी हुई थी। तो प्रचार के लिए फ्री ऑफ चार्ज भेजा गया आत्मधर्म उसको मिला, उनको लगा कि हाँ कोई आत्मशांति की बातें इधर है। तो हम भी पहले आए, कोई कभी 600 माइल में इस दिशा में कभी आए नहीं थे, फर्स्ट टाइम वो गुजरात में आए हैं वैसे काठियावाड़ में। तो उनको तो छोटा सा गांव इंटीरियर में है, उतना अहमदाबाद से भी 200 किलोमीटर नीचे आना पड़ता है, पता नहीं जानते थे कुछ, इतनी तैयारी थी। तो सुनते ही पहचान लिया, इतना उठा 24 घंटे में मेरी तो दशा ले गए अभी, इतना काम तो तैयारी तो उपादान की होती है, तो जैसे कैसे भी योग बनता है। मानो कि कभी इसका प्राण छूट गया होता, ऐसा नहीं बनता था, तो ऐसी जगह पर उसका पैदा होना हो जाता है, सतपुरुष के चरण में सीधा जाना। तो इतनी भी देर नहीं लगती कि 600 माइल की मुसाफरी करने में जितनी लगे उतनी भी नहीं लगने वाली, ऐसी कुदरत बनती हुई है। जब पुण्यपा का फल मिलता है तो आत्मकल्याण की भावना का फल नहीं मिलेगा क्या, कैसे बन सकता है? तो ब्रह्मांड को फिरना पड़े ऐसे ऐसा होगा, ऐसा करके कि चैतन्य में से भावना उठे, और उस भावना सफल नहीं हो तो 14 ब्रह्मांड को शून्य होना पड़े, इतनी ताकत है वो भावना में, तो 14 ब्रह्मांड को पास में बस में रेट कर दे, इतनी ताकत है।
कितनी कड़वी बात कही है, कितनी कड़वी बात कही है, कहते कही होगी उन्होंने महसूस किया
थोड़ा
लंबा होता है, भावना तो
भावना ही होती है,
ताकत है। इससे कोई ताकत वाली चीज नहीं है विश्व में, समझो ऐसे बात।
युवा योग ना था
और उसको ऐसे कोई समझाने वाले नहीं मिलते कि भावना ऐसे होती है, इसका फल ऐसा होता है, ये भी नहीं होता, फिर भी उनको तो होता है, होता ऐसा ही होता है। तो उतनी भी सुविधा है कि चलो ये बात भी समझाने वाले मिलते हैं, तो ये भी नहीं मिलते थे उन दिनों, लेकिन उठ गई भावना, उसको उठ गई अंतर में से,
देह दूर रह गया, तो वो इवी जगह जन्म था उसका, जहाँ अगर सत्पुरुष है ना चरण
तो है ना चरण में उत्पन्न सिद्धार्थ
बराबर भावना नहीं पड़ी है।
महत्व तो खोज से आता है चरणों में, तो महत्व नहीं आता है, महत्व तो उसके खोज से आता है।
हाँ वो तो है, परिश्रम करता है उसको प्राप्ति का मूल्य रहता है,
लेकिन तीन चरणों में मिल जाता है महत्व रहता
है, पहले परिश्रम किया गया
उसका रिजल्ट है, उसका रिजल्ट है
पत्ता छोड़ा गया।
हमारी जिज्ञासा बढ़ाने कितनी दिक्कत हो बस कितनी जिम्मेदारी हमारी।
શ્રીમદ જી એ પોતે પદ લખ્યું, પ્રત્યક્ષ સદગુરુ સમનહી પરોક્ષ જીનો ઉપકાર, પ્રત્યક્ષ સદગુરુ સમનહી પરોક્ષ જીનો ઉપકાર, પોતે પદ લખ્યું, એવો લક્ષ થયા વિના ઉગે ના આત્મ, પ્રત્યક્ષતાનો મહિમા એમને પોતે ગાયો,
કેટલી જગ્યાએ ગાયો છે, પણ હમકો નહી માનના, ઇસકા મતલબ કે ઇસકી બાત હમકો નહી માનની હૈ, એ હો ગયા। મેન્સરનો જીવન જીવો, સત્સંગ ની એને કેટલી કિંમત આવી, તો ઘર છોડી દીધું, તો
15 વર્ષની
ઉંમર બી એટલી છોટી છે, આજકાલ 15 સાલ કે બચ્ચે ક્યાં સમજે, સત્સંગ મેં ક્યાં સમજે,
60 साल वालों नहीं समझता है, 15 साल वाले क्या समझते हैं। अपना महत्व सत्संग का आए बिना सत्संग का लाभ होगा भी कैसे, अगर मिल गया तो भी होगा कैसे, मिल गया तो है नहीं
कीमत वगैरह।
जो 30 किलोमीटर चल के सोनगढ़ जाएगा भावनगर से, वो क्या 10 मिनट लेट पहुंचेगा क्या?
जी
गाड़ी वाला 10 मिनट लेट पहुंचेगा।
मेरा
एक कमरे से दूसरे कमरे में जाएगा और ये सोच रहा है थोड़ी देर में चलेंगे, एक कमरे से दूसरे कमरे में जाएगा और ये सोच रहा है थोड़ी देर में चलेंगे, अभी टाइम नहीं हुआ
है। जो 30 किलोमीटर पैदल चल कर चल के परिश्रम करके पहुंचेगा
बराबर,
तो आधा घंटा पहले ही पहुंचेगा
बराबर।
जेने मेहनत कर्या वगर सतपुरुष मिली जाओ तेने शू करू,
પહેચાન કરવી પડતી, મિલ ગયા તો પહેચાન કરવી પડતી, મિલા કેસે હમારે હજારો મુમુક્ષ કહેતે હમકો ગુરુદેવ મિલ ગયા થા, હમકો ગુરુદેવ મિલ ગયા થા, ક્યાં મિલ ગયા થા, પહેચાન નહીં હોય તો ક્યાં મિલા, એસે તો અનંત બાર મિલા હૈ,
મિલા બાર માં સહયોગ થયો હૈ,
सहयोग तो वहां भी दूसरे लोग रहते हैं सोनगढ़ में, 4000 के 5000 की और भी आबादी है, क्या सबको मिल गया गुरुदेव?
गुरुदेव अपने लिए हमको क्या,
सब्जी वाले भी देखते थे कि गुरुदेव पधारते हैं और सब्जी वाले निकलते हैं वहां, पहचान नहीं हुई तो क्या हुआ, कुछ नहीं।